Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we do not address company-specific queries. You can call us with your queries on 2331-4444 and 2342-1050. Listeners calling us from outside Delhi, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Nikhil Kumar.
नमस्कार मार्केट मंथ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए शेयर बाजार से जुड़ी खबरें और व्यापार जगत की हलचलों के बारे में जानकारी। आज सोमवार है और आप अपनी आर्थिक जिज्ञासाओं के समाधान के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। इसके लिए आप हमें 2331-44 और 2342-1050 पर कॉल कर सकते हैं। दिल्ली के बाहर के श्रोता 011 लगाना ना भूलें। श्रोताओं, आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए और आर्थिक खबरों पर चर्चा के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ यामिनी अग्रवाल। यामिनी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद।
और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में है अनुभा।
थैंक यू निखिल। Domestic benchmark indices witness new peaks. Sensex closes at 80,665. Nifty settles at 24,587. India's total exports register positive growth of 5.4%, says Ministry of Commerce and Industry. And wholesale price inflation rises to 3.36% in June.
भारतीय घरेलू शेयर बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांकों ने आज रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। सेंसेक्स 80,665 और निफ्टी 24,587 अंक पर पहुंचा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा, भारत के कुल निर्यात में 5.4% की सकारात्मक बढ़त और थोक मुद्रास्फीति जून महीने में 3.36% बढ़ी। भारतीय घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी में आज रिकॉर्ड ऊंचाई को देखा गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक 146 अंक यानी 0.18% के उछाल के साथ 80,665 अंक पर पहुंचकर बंद हुआ। दूसरी ओर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी कारोबार के अंत में 85 अंक की बढ़त यानी कि 0.35% ऊपर चढ़कर 24,587 पर आ गया। बीएसई के विस्तृत बाजार में आज मिडकैप में 0.95% की तेजी देखी गई, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में 0.21% की वृद्धि दर्ज हुई।
एंड आवर फर्स्ट कॉलर ऑफ द डे शंकर इज ऑलरेडी ऑनलाइन विद अस, बट बिफोर वी टेक योर कॉल शंकर, लेट मी give you the detailed story of the stock market. Indian equity benchmark indices Sensex and Nifty saw record highs today. The BSE Sensex rose 146 points or 0.18% to close at 80,665. The NSE Nifty advanced 85 points or 0.35% to close at 24,587. Various foreign fund inflows aided the indices to see new peak. Foreign institutional investors made substantial equity purchases, acquiring stocks worth over 4,021 crore rupees. In the NSE Nifty Index, 181 companies hit their 52-week high, while 20 hit their 52-week low. In the broader market at the BSE, the mid-cap index was up by 0.95%, while the small-cap index rose 0.21%. 18 out of 30 companies registered gains in the Sensex index. The top three gainers today were SBI, which rose 2.55%, NTPC rose 2.23%, and Ultra Cement rose 1.98%. On the other hand, the three major laggards were Asian Paints, which lost 1.44%, Tata Steel lost 1.13%, and Axis Bank fell 0.77%. In sectoral indices at the BSE, 16 out of 20 sectors logged gain. The top three gainers were oil and gas, 2.32%, energy 1.61% and realty 1.4%. On the other hand, the three major laggards were information technology 0.2%, capital goods 0.12% and industrials 0.07%. The overall market breadth at the BSE was positive. Out of 4,168 companies, the shares of 2,036 companies advanced, while shares of 2,004 companies declined and shares of 128 companies remained unchanged. And now let's go over to Bhopal from where Shankar is calling us. Shankar, welcome to Market Mantra. Please ask your question.
Good evening, Market Mantra team.
Good evening.
My question is about, madam, there is a huge amount of cash flow into equity market from domestic investors in the form of SIP or as a retail investor also indirectly into equities. So since it has never been so in the history of our stock market, has such a situation happened in any other country? And as an economist, what are the negative points of this kind of situation when there is only upward move? And will the government be intervening to cool down this overheating or any other measure they can take in this, you know, situation? What are the disadvantages or what are the bad side of this one side running story? As an economist, do you think? Thank you.
Well, usually stock markets have been on an increase primarily because of two factors. As you said, one is the cash flow that is coming from the SIPs and the retail investors. Also, if you look at the June figures for FIIs, so they've been about 26,000 crores. Also, if you look for the first 2 weeks of July, it has been over 15,000 crores. Overall, the geopolitical scenario is very uncertain and highly volatile, given the situations that have been going on. Also, there have been not any specific directions for further reforms that may be clearly identified through. So the betting on the particular reform process is pretty high, and then the overall valuations are also very high. Any triggers in the geopolitical scenario or in the domestic front can lead to a sudden fall of the market. Also, as many would indicate, the stock markets have to be based upon the fundamental values of the companies, which again becomes an important aspect before the valuations come through. Overall, the markets continue to remain under, you know, being overvalued. So it's not since such steep rises are not defined by a specific process, one cannot imagine as to why the steep rises are there, and hence the government or the regulatory bodies can investigate as to where the funds are coming from and which specific sectors are they being directed to. And if they do find that there is a reason for a suspicion to that, they can further investigate the matter. Besides that, the role of the government doesn't come into picture there. The government only has in picture is the particular reforms that they're likely to bring and the budgets that they're going to identify that will define the growth or the momentum of the economy. One factor which plays in positive direction of the economy is the fact that international agencies have recognized the growth rate in India. But again, as you said, overheating is a serious problem which can be caused by a very high inflation, increase in the stock prices, and can lead to difficult situations at a later stage.
जयपुर से जितेंद्र हमारे साथ में हैं. जितेंद्र जी, आपका प्रश्न पूछिए.
हाँ, हमारा प्रश्न ये है कि लेखा अनुदान और बजट में क्या डिफरेंस है मैडम, पहला ये है. और दूसरा मैडम, अभी राजस्थान का भी बजट आया तो घाटे का ही है और कर्ज लिया जा रहा, तो हम जब तक होश संभाले तो लगभग घाटे का और कर्ज ही लिया जा रहा, तो कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी हम लोग को तो इसका भुगतान करना ही पड़ेगा. ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, और हम लोग खुश होते कि बजट बहुत अच्छा आया, बजट बहुत अच्छा आया.
ये आपने उससे पहले एक शब्द इस्तेमाल किया था,
लेखा अनुदान और बजट में फर्क जानना चाहते हैं.
लेखा अनुदान जो है जो आप बजट कहते हैं वो एक गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें वो अपनी एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यूज आइडेंटिफाई करते हैं. रेवेन्यूज ज्यादातर आपके टैक्सेस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की अर्निंग्स या जो आपके बाकी रिसीट्स होती हैं गवर्नमेंट की वो होती हैं, और जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं उसी में आपके जो वेलफेयर स्कीम्स हैं या जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस करते हैं, चाहे मेंटेनेंस ऑफ डिफेंस है, पुलिस है, कोर्ट्स है और चीजें हैं उसमें जाती हैं. बजट ओवरऑल डायरेक्शन डिफाइन करता है कि क्या एलोकेशंस होंगी और किस तरफ जो है गवर्नमेंट झुकाव रखेगी, किस चीज किन चीजों को प्रायोरिटाइज करेगी और उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हुए इकोनॉमी को आगे लेके चलेगी. जी
लेखानुदान के बारे में जानना चाह रहे थे, उसमें यह होता है कि जो भी सरकार अपने तत्काल वायदों को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष के किसी एक हिस्से के लिए अग्रिम रूप से जो भी अनुदान प्रदान करती है उसे हम लेखा अनुदान के रूप में जानते हैं.
जी और आगे चलते हैं, अगले कॉलर हैं भूप सिंह दिल्ली से. भूप जी आपका स्वागत है मार्केट मंत्र में, अपना सवाल पूछें.
हाँ नमस्कार
जी, सवाल पूछें अपना.
मेरा यह है कि जन व्यक्ति दृष्टिबाधित तो वो शेयर मार्केट कैसे जुड़ सकता है
जी? आप अपना सवाल दोबारा पूछें, आपकी आवाज कट कर आ रही है.
ये मैं रहा हूँ, दिव्यांगजन व्यक्ति दृष्टिबाधित है
जी,
वो शेयर मार्केट से जुड़ना चाहता है, उसका क्या अलग से कोई प्रावधान है?
जी देखिए, आप जो है स्टॉक ब्रोकर्स से या जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, वो आपके लिए अकाउंट्स खोल सकते हैं. साथ ही साथ आप कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश कर सकते हैं जिनके लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. जैसे अगर आप आरबीआई बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें या म्यूचुअल फंड के द्वारा आप निवेश करें जो खासतौर पे बॉन्ड्स मार्केट में हो या बैलेंस्ड फंड्स हो जिसमें इक्विटी और डेट इक्वली आए, उसके अंदर आप निवेश कर सकते हैं. और इसके लिए आप एक बैंक खाता खोल सकते हैं जिस बैंक खाते में डीमैट अकाउंट हो, और उसी डीमैट अकाउंट को इस्तेमाल करके आप निवेश कर सकते हैं, या तो आप ब्रोकर के माध्यम से या आप वैसे इनकी जानकारी जान करके पूरी तरीके से समझ करके फिर निवेश कर सकते हैं.
वो ये भी जानना चाह रहे थे कि जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट भी किया जाता क्या शेयर मार्केट, वो उनका स्पेशली ये पूछना है.
जी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होता क्योंकि जो दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि उनको कुछ फायदा मिलेगा या कोई स्पेशल टैक्स एग्जेम्पशन होगी या कोई चीज होगी अगर वो स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं. लेकिन काफी हद तक सहूलियत है आपके पास निवेश करने की, तो आप अगर निवेश करना चाहें तो आप कर सकते हैं.
और अतानु शाह हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हुए हैं. अतानु जी आपका प्रश्न क्या है?
गुड इवनिंग, आई एम अतानु फ्रॉम कोलकाता. माई जामिनी मैडम एंड टू एवरीबॉडी थैंक्स. सर माई क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी अवर की कंपोनेंट ऑफ अपकमिंग बजट? थैंक यू
जी. अपकमिंग बजट काफी हद तक जो जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं उसको देखते हुए बनाया जाना चाहिए, और ये उम्मीद की जा रही है कि बजट साथ ही साथ जो भारत की ग्रोथ है उसको जो है समझ करके और जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हुए और ज्यादा से ज्यादा रोजगार देते हुए बजट का एलोकेशंस होंगे. ये भी कोशिश की जाएगी कि जो भी एलोकेशंस हो वो सिर्फ ग्रोथ को ना देखें, साथ ही साथ इन्फ्लेशन को भी देखें, और उसके साथ साथ ये भी देखें कि आगे चल करके वो मार्केट्स को ज्यादातर स्टेबलाइज कर सकें, ताकि जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है या जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज हैं उसके लिए वो पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हों.
एंड द नेक्स्ट कॉलर इज फ्रॉम महाराष्ट्र, दैट्स मिस्टर गुरुनाथ. मिस्टर गुरुनाथ वेलकम टू मार्केट मंत्र, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन.
नमस्ते मैडम.
नमस्ते, अपना सवाल पूछे.
यामिनी मैम को भी नमस्ते.
जी नमस्ते.
मैम मेरा क्वेश्चन है गोल्ड के बारे में. मैम ये जो वन नेशन वन गोल्ड रेट जो सरकार अपनी जो योजना लागू करने जा रही है तो इसमें मतलब एक गोल्ड के रेट में कितनी ट्रांसपेरेंसी आएगी, क्योंकि देखा जाता है कि हर स्टेट में तो अलग अलग दिखता है, और ये जो ज्वेलर लोग जो मतलब अपने मनमानी ढंग से जो रेट वसूलते हैं इसके बारे में। थैंक यू मैम।
जी देखिए, गोल्ड काउंसिल से रेट आता है और बहुत सारे जो गोल्ड के व्यापारी होते हैं वो उन्हीं रेट्स को, कुछ स्पेसिफिक मार्केट्स के रेट्स को अपना बेस रेट बांध करके और फिर उसके ऊपर कुछ एडिशंस करते हैं। आपको आमतौर पे ये रेट्स जो बड़े ज्वेलर्स हैं उनके जो है वहां पे नजर आएगा लिखा हुआ कि ये उस मार्केट से ले रहे हैं या किसी और स्पेसिफिक मार्केट से। गोल्ड की सप्लाई और डिमांड पे डिपेंड करता है कि क्या रेट रहेगा, और ज्यादातर एक स्पेसिफिक मार्केट को या जो मेन मार्केट होती है जिसे होलसेल मार्केट कहते हैं उसे आइडेंटिफाई करके गोल्ड रेट्स ज्यादातर ज्वेलर्स आइडेंटिफाई करते हैं। ये हो सकता है कि डिफ्रेंसिएशन हो स्मॉल बिगर और कहीं और जहां पे सप्लाई कम हो उसके अंदर, पर ओवरऑल गोल्ड काउंसिल डिफाइन करती है कि क्या रेट्स होंगे।
और गुरुनाथ जी, एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि जो भी ज्वेलर्स होते हैं वो मेकिंग चार्जेस लेते हैं, इसलिए दामों में फर्क कुछ ज्यादा ही हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने गोल्ड की ज्वेलरी कहां से ले रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है इसमें दामों को निर्धारित करने में।
Next caller is from Delhi. That's Mr. Ved Prakash. We seem to have the call seem to have disconnected. Yamini, talking about the markets today, again we saw record peaks and markets have been, you know, on a record highs in the last few weeks that we've been seeing. As one of the first caller asked, you know, it's like overheated market. Do you think it's an overheated market and a correction is imminent?
I do feel that it is an overheated market because there are a large number of concerns over there. One, India's growth rate is much beyond what the surrounding growth rates are. Second of all, there is a sudden flow of FIIs immediately after the elections, and there have not been many announcements specifically in terms of the reforms or the changes that they're wanting to bring about, which does not somewhere or the other identify as to why sudden influx of FII flows is there. Another important aspect is that as the market touches every time a new high, one needs to understand which specific fundamentals are underlying. Yes, there are fundamentals of an increased budget outlay which is there. There has been about 1.1 lakh crore which the government has spent in the 2 weeks, which is a very high amount. Also, the RBI has given the highest dividend ever. About 6,000 crores has been given by the PSU, some PSUs have given that amount of money. Already the rate is very high in terms of the growth vis-a-vis the others. The inflation in the food is double digit.
Yes.
The fact that the government is spending on a continuous spree. There has to be a certain amount of a balance both in terms of macroeconomic fundamentals, which is inflation, which needs to be brought down and for which government spending needs to be slowed. Second, too much of a disinvestment. We've seen disinvestment, whether it's at the PSU or it's Air India, makes people lose jobs and there would be a jobless growth that would be there, which cannot be achieved, which further puts into stake. So I feel that the market is getting overheated and it really requires more stability in terms of the overall markets and the development which we are looking for, especially for the disadvantaged and the poor, because inflation strikes as the highest tax on the poorest of the poor.
और रायगढ़ से कुश हमारे साथ हैं। कुश, आपका सवाल क्या है?
जी नमस्कार सर।
जी नमस्कार
मैम को, मेरा नमस्कार।
जी नमस्कार
सर, मेरा दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि अक्सर हम सुनते रहते हैं कि डेट और इक्विटी ये क्या दोनों होते हैं, और दूसरा मेरा सवाल एस आई पी से है, क्या हमें म्यूचुअल फंड में एस आई पी करना चाहिए या डायरेक्ट शेयर मार्केट में एस आई पी करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, थोड़ा विस्तार से बताएं।
जी देखिए, डेट होता है जो डेट सिक्योरिटीज होती हैं, जब कंपनीज लोन उठाती हैं तो उन्हें डेट सिक्योरिटीज कहती हैं, तो या फिर आपका कोई भी सरकार आपसे पैसा लेती है तो वो उसे लोन की तरह लेती है, उन्हें हम डेट सिक्योरिटीज कहते हैं। और क्योंकि डेट सिक्योरिटीज पे एक इंटरेस्ट आपको हमेशा दिया जाता है, तो माना जाता है कि वो फिक्स्ड इंटरेस्ट आपको उस समय तक मिलेगा जब तक वो डेट सिक्योरिटी आप होल्ड करेंगे, चाहे 5 साल 7 साल 10 साल जितने भी साल की वो डेट सिक्योरिटी, और मेच्योरिटी पे आपको प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने निवेश किया है वो वापस मिल जाएगा। इक्विटी के अंदर ओनरशिप कैपिटल कहते हैं, जो आप निवेश करते हैं किसी कंपनी में तो आप उसके ओनर बन जाते हैं उतने हिस्सेदारी के लिए जितने के लिए आपने निवेश किया है, और इसमें आपको पैसा कभी वापस नहीं मिलता तब तक जब तक कंपनी वाइंड आउट ना कर जाए या बिल्कुल ही बंद हो जाए। और इसमें लेकिन डिविडेंड आपको मिलता है, और जो आप शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें आपको कैपिटल एप्रिसिएशन, जिसे हम कहते हैं प्राइस के अंदर इंक्रीज होगा, उसका मुनाफा मिलेगा। म्यूचुअल फंड्स जो है एक जो है बहुत सारे इक्विटी डेट को मिलाकर के कुछ निवेश किया जाता है, या कोई एक थीम ले लेते हैं कि हम डेट में करेंगे या इक्विटी में करेंगे, या कुछ प्रतिशत इक्विटी में करेंगे कुछ डेट में करेंगे या कुछ स्पेसिफिक कंपनीज में करेंगे, उस थीम को लेकर के एक पोर्टफोलियो मैनेजर अलग अलग तरीके से निवेश करता है और उस निवेश को वो मैनेज करता है आपके लिए। आप उसके अंदर थोड़े थोड़े अमाउंट, जो 500 रुपए से ऊपर के अमाउंट है उसमें निवेश कर सकते हैं, और उसके लिए आप किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी जा सकते हैं। आप अपने बैंक के डीमैट, जो इंटरनेट में बैंक का डीमैट अकाउंट होता है उसमें 3-in-1 अकाउंट होता है, उसके थ्रू भी निवेश कर सकते हैं, वरना आप किसी जो है स्टॉक ब्रोकर के पास जा सकते हैं, वो आपको निवेश में मदद कर सकता है। पर इसके लिए जरूरी ये बात है कि आप समझें कि आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्या है उसमें निवेश करने का, आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं और आपको उस निवेश को कितने समय में निकालने की इच्छा है।
और हमारे अगले श्रोता है गाजियाबाद से तारकेश्वर, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रुपए पे नजर डालते हैं। तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में आज अमरीकी डॉलर के मुकाबले रुपया 11 पैसे कमजोर होकर 83.62 रूपये के स्तर पर बंद हुआ। रुपया आज 83.53 रूपये पर खुला था, लेकिन सत्र के दौरान अमरीकी डॉलर के मुकाबले ये 83.62 रूपये के स्तर पर पहुंच गया था। तारकेश्वर जी, आपका प्रश्न पूछिए अब।
सर नमस्कार, मैं तारकेश्वर मिश्र गाजियाबाद से बोल रहा हूँ
जी।
मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे सेबी म्यूचुअल फंड के रेट हमेशा बढ़ते रोबस्ट होते जा रहे हैं, लेकिन बैंक के इंटरेस्ट वगैरह उतने रोबस्ट नहीं होते हैं, इसके पीछे का क्या इकोनॉमी है?
जी देखिए, म्यूचुअल फंड का जो रेट है वो आपको एनएवी, जो नेट एसेट वैल्यू है, उस पर मिलता है। जो बाजार में जिस प्राइस पे या मूल्य पे शेयर ट्रेड कर रहा है या जो डेट है वो ट्रेड कर रहा है, उसको आप पूरे जो आपका पोर्टफोलियो है जिसमें आपने बड़ी सारी इक्विटी में या डेट में निवेश कर रखा है, उसकी क्या मार्केट वैल्यू होती है एट द एंड ऑफ द डे, डे के खत्म होने के बाद, उसके ऊपर आपको म्यूचुअल फंड मिलता है। जहां तक आपका फिक्स डिपॉजिट की बात है, वो इस बात पे निर्भर करता है कि पहला तो आरबीआई का क्या रेपो रेट रहेगा या रिवर्स रेपो रेट रहेगा, दूसरा इस बात पे भी निर्भर करता है कि उस बैंक को कितनी लिक्विडिटी की जरूरत है और कितने डिपॉजिट्स की जरूरत है और वो क्या रेट देना चाहती है। अगर उसे ज्यादा डिपॉजिट्स की जरूरत है तो वो बहुत हायर रेट देगी देन दी मार्केट, अगर उसे कम डिपॉजिट्स की जरूरत है तो वो कम रेट देगी, या आमतौर पे जो कॉम्पिटिटिव रेट है उसको मान करके चलेगी ताकि उसके पास एक संतुलित तरीके से डिपॉजिट्स आए।
अगली खबर पर आगे बढ़ते हैं। एशियाई शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज सकारात्मक माहौल देखा गया। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.14% के लाभ में रहा। चीन का शंघाई कंपोजिट 0.09% की तेजी के साथ बंद हुआ। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स में 0.06% की वृद्धि हुई और हांगकांग के हैंगसेंग सूचकांक में 1.54% की बढ़त देखी गई। हालांकि जापान का निक्केई आज अवकाश के कारण बंद था। प्रमुख यूरोपीय शेयर बाजार आज लाल निशान के साथ कारोबार कर रहे थे। समाचार लिखे जाने तक फ्रांस के कैक में 0.52% की गिरावट देखी गई और लंदन का फुटसी 100 0.28% के नुकसान में था। जर्मनी का डेक्स 0.23% की सुस्ती में रहा।
Moving on to the next story, India's total exports, that's merchandise and services combined, for June 2024 is estimated at $65.47 billion, registering a positive growth of 5.4% compared to June 2023, says the report published by Ministry of Commerce and Industry. Total imports, including merchandise and services combined for June 2024 is estimated at $73.47 billion, which registered a positive growth of 6.29% compared to June 2023. Further, the total exports from April to June 2024 is estimated at $200.33 billion, or a 8.6% positive growth. On the other hand, the total import from April to June 2024 is estimated at $222.89 billion, or 8.47% growth compared to the corresponding period. Services exports is also expected to grow by 12.16% between April to June 2024. The US was the top export destination in June 2024 with an export growth of 5.98% compared to June 2023, whereas the UAE was the top import destination, exhibiting a growth of 48.15% in terms of change in value. Yamini, if you look at the figures that have come out today, the total exports, which have, stand at about estimated $65.47 billion, and that is a positive 5.4% growth, you know, year on year. How do you analyze it? What are the factors for this?
Overall, there has been, let's say, a positive change in the world markets. The world markets have been able to contain inflation. And there have been a growth registered in terms of their jobs and other factors. Also an increase in the incomes that they see. So the exports are directly affected to that. Also, there has been a continuous effort in terms of identifying newer markets and newer segments. So that also affects the overall exports. And besides India being a bright market, not directly being affected by a direct confrontation, there has been a positive direction to that.
अगली खबर पर आगे बढ़ते हैं. देश की थोक मुद्रास्फीति में लगातार चौथे महीने वृद्धि देखी गई. खाद्य वस्तुओं, विशेष रूप से सब्जी और विनिर्मित चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण जून में थोक मुद्रास्फीति 3.36% रही. थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति मई में 2.61% थी. पिछले वर्ष जून में यह -4.18% थी. आंकड़ों के अनुसार खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति मई में 9.82% की तुलना में जून में 10.87% हो गई. चेन्नई से मुकेश हमारे साथ हैं. मुकेश जी, आस्क योर क्वेश्चन.
या डॉक्टर यामिनी, गुड इवनिंग. माय सिंपल क्वेश्चन इज हाउ द म्यूचुअल फंड कंपनीज दे डील विद द डिविडेंड्स डिक्लेयर्ड बाय द स्टॉक्स दैट दे ओन.
Well, they happen to have the incomes from there, and then they, whatever are the incomes for a mutual fund, they are then minus the expenses that are there. They are then distributed accordingly by the mutual fund companies.
Yamini, as Nikhil just read out, you know, the latest figures for the WPI based inflation for June, and we see, of course, 3.36%, and basically it has risen because of the rise in the price of food articles. Given the fact that even CPI inflations, which came out last week, are, you know, were quite high, that was 5.08%, how difficult a path is it going to be for the RBI, you know, moving forward, because everybody is expecting rate cuts?
The RBI so far has kept the rates constant, and the indications have been that they would like the inflation to first come down to a particular targeted level, whether it is the food inflation, manufacturing, or any other unit. Given the geopolitical uncertainties, I do not feel that the RBI would step in to reduce the rates, because already the growth rates are high, and as I had mentioned, that the overall government push towards the investments is very high, bringing about overheating situations, which can be difficult situations for any economy.
Moving on to commodities, Brent and WTI crude were experiencing downward trend in global crude market today. Brent crude decreased by 0.24% to $84.83 per barrel, while the U.S. West Texas Intermediate was down by 0.29% to $81.91 per barrel when reports last came in.
और श्रोताओं, आपको बताते हैं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में वायदा कारोबार के लिए सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था. इस कीमती धातु का वायदा मूल्य अगस्त अनुबंध के लिए 0.11% की तेजी के साथ 73,349 रूपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज किया गया. वहीं सितंबर अनुबंध के लिए चांदी सुस्ती में थी. अंतिम समाचार मिलने तक चांदी 0.48% की बढ़त के साथ 92,666 रूपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर रही थी.
And that's all we have time for in this edition of Market Mantra. Yamini, thank you so much for coming to the studio and answering the queries of our listeners, and for the discussion on the important economic stories of the day.
Thank you.
And before we close, a reminder of the headlines. Domestic benchmark indices witness new peaks. Sensex closes at 80,665. Nifty settles at 24,587. India's total export registers positive growth of 5.4%, says Ministry of Commerce and Industry. And wholesale price inflation rises to 3.36% in June. And that's it in this edition of Market Mantra. We will be back tomorrow at the same time. Do tune in at 6:30 p.m. to your favorite economic program of the day, Market Mantra. Till then, from the entire team, Namaskar.
Namaskar. Market Mantra.